इसलिए ऐश्वर्य से सेवा की बुद्धि होती है और माधुर्य से होता है अनुकूल्य भाव। अनुकूल्य भाव माने क्या है? अनुकूल्य भाव माने होता है इनकी प्रीति की भाव से सेवा करने की भावना। प्रीति सेवा एक चीज है, प्रीति एक चीज है। यदि सेवा हो रही है और अनुकूल भाव नहीं है तो क्या होगा? भक्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आता। यदि कोई सेवा कर रहा है, सेवा कहते हैं किसी को, किसी से यदि कोई प्रसन्न हो जाता है उस क्रिया का नाम सेवा है। चारुण मुष्टि कृष्ण से लड़ रहा है और कृष्ण को आनंद हो रहा है, ये तो कृष्ण की सेवा हो गई, किंतु प्रतिकूल होने से इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये सेवा प्रतिकूल रहने से, अर्थात सेवा किसको कहते हैं? कायिकी, वाचिकी और मानसिक क्रिया का नाम सेवा है, क्रिया है। मन से, तन से, वचन से यदि किसी के प्रति कोई क्रिया होती है तो ये चेष्टा हुई। ये तीनों चेष्टाएं होने पर भी यदि कृष्ण को रुचिकर भी है तो भी जो कर रहा है उसके अंदर में प्रतिकूल भाव है, अतः कृष्ण को मारने के लिए। इसलिए चारण मुष्टिक इत्यादि का यह जो कायिकी, वाचिकी और मानसिक चेष्टा है, सेवा तो हो गई किंतु प्रतिकूल भाव होने के वजह से यह भक्ति नहीं कही जाती। और ऊपर से देखने वाली क्रियाएं यदि प्रतिकूल सी भी लगती हैं किंतु जो कर रहा है उसके अंदर में ये भावना हो इससे कृष्ण को सुख हो। सुदामा जी कृष्ण से लड़े और सुदामा जी ने आज कृष्ण को दांव में लगाकर नीचे गिरा दिया और उसके पीठ पर चढ़ करके यहाँ धूली लगा करके ऐसे ऐसे रगड़ने बोले जी अब बेटा कहाँ जाएगा बतलाओ, और कहा जे अब तुमको हमारी पारी देनी पड़ेगी, जैसे हम तुमको वहां तक ले गए थे अब तुम हमको अपने कंधे पर बैठा करके ले चलो। और उसके कंधे पर बैठ करके दुल-दुल करते हुए घोड़ा जैसा उनको, ये देखने में मालूम पड़ता है ये कृष्ण से ही सेवा ले रहे, किंतु नहीं, इसी से कृष्ण की प्रसन्नता। यशोदा मैया उनको बांध रही हैं, रुला रही हैं, कृष्ण रो रहे हैं, स्तन का स्तन से मुख छुड़ा दिया और दूध को बचाने के लिए गई, तो इसमें भक्ति जैसी सेवा वृत्ति नहीं मालूम होती है। जी इनकी कायिकी, वाचिकी, मानसिक सेवा दूध पर है कृष्ण से अधिक, तो भी चुके कृष्ण हमारे दूध से नहीं पालन पोषण उसका होगा, वो होगा किससे?
उस गुरु दूध।
इसलिए कृष्ण से भी अधिक प्रीति उनके वस्तुओं पर होता है, ये भी प्रीति का एक लक्षण। इसलिए
ये तो प्रतिकूल अनुकूल देते हैं जावे ना कृष्ण, तो ये तो अनुशीलन, ये जो
अनुशीलन तो होला किंतु
के अच्छा भालो है, माने चालू मुष्टि के भालो এটা है,
चालू मुष्टि के ठीक भालो ना, चालू मुष्टि के একেবারে তে হিংসা
পর হিংসা না, এটা ভালো বুঝে ওর থেকে উঁচু উত্তরে হ্যাঁ, কিন্তু গোপীদের অনুকূলে ছে এর নিচে
ওইটা বুঝাচ্ছে। এখন দেখতে হবে যে সে ক্রিয়া তো একই রকমের কিন্তু অনুকূল ভাব কার মধ্যে বেশি, অনুকূল ভাব কিসমে অধিক হ্যাঁ, যশোদাজি মে হ্যায় না সখাও মে হ্যায় না গোপীয় মে হ্যায়, কিসমে অনুকূল ভাব অধিক হ্যায় দিখলা রে, দ্বিজ পত্নী মে হ্যায় না উনমে হ্যায়। ইসলিয়ে ইয়াহাঁ
মিলা পহলে সে শুরু করো
ऐश्वर्य रहेगा, किंतु जो बलवान व्यक्ति होता है ना अपने अधीन व्यक्ति को अपने अधीन रखता है, वैसे माधुर्य जो है वो बलवान है, उसमें कभी कभी ऐश्वर्य आ सकता है किंतु वो माधुर्य को ढक नहीं सकता। ऐश्वर्य मथुरा या द्वारका में भी है, वो माधुर्य को ढकेगा नहीं, वहां पर अपने आप माधुर्य कम प्रकाशित है। इसलिए मां विभो, मां एवं विभो, निशंसम पुरुषम निगमम न स पुनरावर्तते इति वेदवाक्यम। यदि कृष्ण को एक आदमी पा लेता है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिस भगवान को या भगवत धाम को प्राप्त करके कोई वहां से लौटता नहीं है, उसको भगवान का परम धाम है। यदि कृष्ण को कोई पा लिया तो वहां से फिर लौटेगा नहीं। ये करिए, ये वेद की जो बात है निगमम, आप स्मरण कीजिए। तो क्यों हम क्यों स्मरण करें? अरे निगम तो आपका श्वास है, तो श्वास में उस व्यक्ति में कोई अंतर तो है नहीं, तो वेद ही तो आप ही हैं। इसलिए वेद की जो बातें हैं सब आप ही की बात है। इसलिए यदि उनके पास में कोई जा करके नहीं लौटता है, तो हम साक्षात रूप में आपके पास में हैं, तो हम कैसे लौट करके जाएं? यदि जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बातें व्यभिचारिणी हो गई, आपकी बातें ठीक नहीं है यदि हम लौट करें। इसलिए सत्यम कुरुष्व निगमम तवपाद, आपके चरण में हम आई हैं, और फिर हम लौट जाएं अपने घरों में, यहाँ पर आग जल रही है, ये तो आपकी बात के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए सत्यम कुरुष्व, आप सत्य कीजिए। ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, गीता भी उपनिषद है इसलिए ये भी श्रुति है। गीता में भी कहते हैं जो लोग जैसा हमारा भजन करते हैं हम भी उसको उसी के अनुरूप में उतना ही कम या अधिक हम उसका भी भजन करते हैं। और आप समझ में, यदि कोई एक पैसा एनर्जी दे करके भगवान का भजन करे तो भगवान तौल करके उसी के अनुरूप उसको भी वो चीज देंगे। ये ऐसा नहीं हम भजन तो करते नहीं हैं और सब दे देंगे, ऐसा नहीं। जो जैसा हमारा प्रतिभाव है, जो प्रतिभाव से कर रही हैं, जो प्रियतम स्वभाव से कर रही है, पुत्र भाव से कर रहा है, कोई सखा भाव से कर रहा है, कोई इनमें से कुछ नहीं होकर के तटस्थ भाव से ब्रह्म भाव जान करके कृष्ण ब्रह्म है एक रूप से कर रहा है, कोई स्वर्ग के लिए, कोई सांसारिक सुख के लिए उनसे कर रहा है, तो कृष्ण उनको वो सब चीजें दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं किस लिए? आपकी चरणों की सेवा करने के लिए, यज्ञ पत्नियां कह रही हैं। तो जब हम आई हैं तो आपको हमारे अनुरूप हमसे प्रेम करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो ये वेद बात हो जाती है, और वेद तो आप ही हैं इसलिए आपकी बातें गलत हो जाएंगी। इति निगम रूपम स्ववाक्यानंच सत्यम कुरुष्व, इनकी बातों को आप सत्य कीजिए। भवती तब ननु, कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है? भवती ना विप्र जात्यभिमानो दुष्टज तत्प्रमा, अरे आप लोग तो ब्राह्मण पत्नियां हैं ना, ब्राह्मण की पत्नी, जाति में ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मण देव हूं, इसलिए आप यदि उस रूप में आती हैं हमारे पास में ब्राह्मणी का अभिमान लेकर, तब तो आप लोग मन ही से हमारा भजन कीजिए और घर में लौट जाए। गोपी अभिमान से यदि आती तब तो हम लोग
समझ जाती होते।
इसलिए प्रीति बहुत कुछ निर्भर करती है संबंध पर। जिसका जैसा संबंध होता है, संबंध से एक अभिमान पैदा होता है। ब्रह्मा का कृष्ण के साथ में क्या संबंध है? अधिक से अधिक ममता रहित प्रभु सनक सनंदन सनातन जी का ये जो भगवान के प्रति भजन कुछ है, सनक सनंदन सनातन इत्यादि जो इनमें ममता नहीं है, ये विभु वस्तु है। यहाँ विभु वस्तु का एकमात्र प्रभाव है, वहां पर ममता नहीं होती। ममता कैसे होती है? तुम्हारे पिताजी कौन है? देखो ये संबंध है ना, ये अभिमान। इन लोगों में से किसी को पिता कहो, कहने से भी जो पिता के प्रति भाव है जन्म से, वो भाव ऐसे नहीं आएगा। इसलिए जो यशोदा माँ का जो पुत्र भाव है उनसे जन्मे हैं, ये एक प्रकार का। और जो वहां पर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं या स्त्रियां हैं जिनके गर्भ से नहीं निकले हैं किंतु कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक प्रीति करती हैं, ये बात्सल्य भाव है। किंतु यशोदा का जैसे गर्भ से निकल करके उनका ये संबंध है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी मैया है, और लोगों के प्रति होगी। इसी को दिखलाने के लिए एक वर्ष के लिए उनके पुत्र और बछड़े हुए। तो अभी जब कृष्ण का रूप वो खत्म हो गया तो वो भाव भी खत्म हो गया। इसलिए यशोदा जी का ये जो बात्सल्य है, ये संबंध जनित है, ये बहुत ही ऊंचा है। कृष्ण यादव कुल में जन्म लिया, उनके पुत्र हुए कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पद्मन जी, अनिरुद्ध जी उनके नाती। ये जो भाव है ये कृष्ण मेरे हैं, ये कभी लुप्त हो सकता है? क्योंकि वो ऐसे मालूम होता है जो शरीर से निकले हुए ये संबंध है। इस संबंध को पुष्ट करने के लिए वैसा संबंध कोई देहगत संबंध चाहिए, जैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ ये संबंध देहगत। गोपियों से क्या है, इससे भी बड़ा देहगत तो ही है। जो वो गोप है, मैं भी गोपी हूं, उसी कुल में है। साथ साथ में काम भाव है, प्रेम भाव, जो यशोदा जी से भी अधिक ऊपर बढ़ जाता है। ये संबंध तो है ही है, साथ साथ में एक प्रीति का भाव। ये भाव जीवन में जो मैं ब्राह्मणी हूं ये नहीं गया, और गोपियों का ये अभिमान ही नहीं, उनका अभिमान है जो मैं कृष्ण की हूं। इसलिए कहते हैं ओ तुम गोपस्यापि पादमूलम भयम दासार्थम प्राप्त। तो ये कह रहे हैं कैसे निबोधुम, जिस गोपियों की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मणी हूं किंतु हम तो चाहते हैं कि गोपियां, गोपियों की चरण की धूली या कुमकुम हम अपने सिर पर लगा करके हमारे जीवन किताब में उनकी सेवा करूंगी हम, ये कह रहे हैं। इसलिए अब हमको अपने चरणों से अलग घर में मत भेज, उनसे अब अब हमारा, उन्होंने तो हमको त्याग कर दिया, भाई ने भी, पति ने भी, मैया ने भी, सास ने भी, ससुर ने भी, सब छोड़ दिया। जो आएगी तब घर में नहीं घुसने देंगे, तो अब हम कहाँ जाएंगी? नहीं विप्रजात्याभिमाने सत्येव कुओपि जनो वक्तुं शक्नोति अतो अस्मत् वाक्येन एव निश्चयता न अस्ति अस्माकं जातिभिमानम् इति भावः। जब हम उनकी चरणों की धूलि अपने सिर पर लेना चाहती हैं तो इसका मतलब है जब आप ब्राह्मणियम नहीं रहे, हम ब्राह्मणी अभिमान भी छोड़ देंगे। छोड़ देंगे कैसे? जन्म जो उस जाति में हुआ है और ब्राह्मणों के साथ में शादी हुई है, इस अभिमान को कैसे छोड़ सकती हैं? ननु फिर यदि कहते हैं गोप्यश्च मम गोप्यो एव दास्यः प्रियश्च समुचिता भवन्ति तास्य बहुवो वर्तते तेषां सत्यं वर्तता विराजिता नाम अपि त्वं ब्रह्मणि दासी कर्तुं बंधोभ्यो विहरेति। अच्छा तो तुम ऐसा करो, जब ब्राह्मणियों की ही दासी बनो, गोपियों की दासी बनने की जरूरत नहीं है। इसमें यदि ऐसा कहते हैं तरही कथम त्याग, तो ये भी कोई लज्जा की बात नहीं होगी, किंतु गोपियों की दासी तुम बनेगी ये तो बड़ी भारी लज्जा की बात है। ओ तो कहते हैं कि न एव जामो वृंदावन एव वनदेता इव वर्तिष्यामहे। अच्छा ठीक है, आप यदि कहते हैं तो हम वृंदावन नहीं जाएंगे, मथुरा भी नहीं जाएंगे, मथुरा में उनके पति लोग हैं और वृंदावन में गोप गोपी ये सब समाज है, लोग कहेंगे अरे देखो तो ब्राह्मणियों को घर में ले आया। अच्छा ठीक है, हम वन देवी की भांति इस वन में ही रहेंगे, जब आएंगे आपका दर्शन करेंगे। ओहो कृष्ण कहते हैं अजी आप लोगों का जो ब्राह्मणी का ये गंध है ना, जब तक गंध नहीं जाएगा तब तक वो ऐसा संभव पर नहीं है, ऐसा ही बात है। यदि कोई साधक ऐसा यदि ब्राह्मण कुल में है, वो भी जैसे कि दंडकारण्य में 7000 ऋषि लोग कृष्ण को पाने के लिए गोपी हो करके भाव ले करके भजन कर रहे, वो उस रूप में नहीं पा सकते थे, एक तो पुरुष, दूसरी बात अभी ब्राह्मण और तपस्वी का भाव, इसलिए योग माया की कृपा से उन लोगों का जन्म हुआ है प्रकट ब्रज में और वहां पर गोपियों के गर्भ से उन्होंने गोपी के कुल में जन्म लिया और गोपियों का संग करने से, गोपियों का दर्शन और कृष्ण का दर्शन करने से गोपियों का जो भाव होता है ठीक उनके अंदर गया है और जो कुछ गड़बड़ी भी थी वो भी दूर। वयं तो दूरे स्थित है, ओ हम नहीं जाएंगे वृंदावन, इसीलिए वो कहते हैं प्राप्ता वयं तुलसी दाम पदावशिष्टम केशैर निवेढुम अति लंघ समस्त बंधु, हम तो बंधुओं को छोड़कर के वृंदावन में ही रहेंगे, वन में, घर में, नगर में, वृंदावन के घर में भी, नंदगोप जी के गोकुल के घर में नहीं जाएंगे, हम वन में ही रहेंगे और वो गोपियां जदा कदा यहां आएंगी, उनकी पद की धूली को हम लोग अपने सिर पर चढ़ा करके अपने को कृतार्थ मान लेंगे। दूरे स्थित्वा पदावशिष्टम जत पदार्थ तदा अश्लिष्ट प्रियशीनां पद संसर्ग भूय अवशिष्टम पर्यंक मध्ये विशिष्ट तुलसीदाम। अथवा जब वृंदावन में आएंगे कृष्ण सूर्य पूजा के बहाने अथवा गोवर्धन के निकुंज वनों में जब गोपियों से मिलित होंगे तब उनके अंगराग जो उस सैया पर पड़ जाएगा उसको ही हम लोग उठा करके अपने सीमा और समस्ता बोल देगा, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हम और कुछ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि गोपियों जैसे आप हमें प्रिया बना लें, हम नहीं चाहते, हम इसके योग्य ही नहीं हैं। तुलसीदाम तत्दासी, जैसे तुलसी को आपने चरण में चरणारविंद में रखा है, बिना तुलसी के भगवान की सेवा नहीं हुई, ऐसे आपके चरणों की तुलसी बस उसी को जो गोपियों ने जो कृष्ण के चरणों में है और उभे कुमकुम लगे ही उसी को हम अपने सिर पर धारण करके कृतार्थ मान लेंगे इत्यादि भाव। अनुतर ही बहुत बंधवत किंग करिष्यति, तब आपके बंधु लोग हैं वो क्या करेंगे, बंधु माने माता पिता भाई बंधु पति इत्यादि क्या करेंगे, तत्र अभी लंग जाते हम भी छोड़ देंगे। इसमें विभो भी कहा है, ऐश्वर्य की बात है, कृष्ण ने उनको ग्रहण नहीं किया ब्राह्मणी अभिमान इत्यादि के वजह से, अब देखो इसमें क्या कहा है। ठीक,
भगवान गोपितम विषम को ऐसा अंकित बात कठोर बात नहीं कहा, संत्यज्य सर्व विषयान सौ पाप हम तो सब दिशाओं को छोड़ कर भी भक्त्या भजस्व, हम जैसे भक्ति कर रहे हैं आप भी वैसा भजन करके हमारी सेवा करें। दुर्वग्रह मा दुराग्रह मत कीजिए, हट मत कीजिए, हमें छोड़िए मत। देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षु, मुक्ति के लिए जो लोग आदि पुरुष की भजन करते हैं जैसे देव पुरुष भी उनको नहीं छोड़ते हैं, ऐसा आप मत छोड़िए। अस्मान हमें आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, घर लड़ जाओ पतियों की सेवा करो। हम लोगों को तो उपदेश दे रहे हैं धर्म के, धर्म करो, और आप पाप राष्ट्र बचाते इतना पाप क्यों कर रहे हैं? ये आपके लिए उचित नहीं है, इसलिए पाप मत कीजिए, पाप मत बचो। वैभव इसलिए पाप मत करिए, इसलिए निषेध कर रही है गोपियाँ ऐसे दिखा। वहाँ पर तो मई वो हाथ जोड़ करके कह रही हैं और यहाँ पर इस तरह से हाथ को लेकर के पकड़ कर, ऐसा आपका करना अनुचित है। स्वाधिकार यहाँ पर कह रहे हैं निशंसम घातकम साक्षात मारकम, साक्षात मारने को ही घातक कहते हैं, निशंस भाव कर जैसे बहेलिया था कभी, जैसे वो लोग हैं वैसे आप, ऐसे आपको भगवान प्रति पुरुषम धार्मिकत्व ख्याति। अरे आपका तो खूब चारों तरफ में प्रसिद्धि है, आप बड़े धार्मिक, और ये आप धार्मिक को जैसे बातें क्यों कर रहे हैं? अधार्मिक किसको कहते हैं? वेद शास्त्रों के प्रतिकूल चलने वाले को अधार्मिक। तो आप वेद शास्त्रों के प्रतिकूल चल रहे हैं जो, और हमें शिक्षा दे रहे हैं ये वेद के अनुसार में चलो, और आप वेद के बातों को उल्लंघन कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वाधिकार के साथ में कुछ रुष्ट होकर के ये बोल रही हैं, और वो लोग रुष्ट नहीं होकर के कैसे? श्रद्धा से हाथ जोड़ करके और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। नंदस्य पुत्र सन्नर्हति, आप कह कौन हैं? आप नंद के पुत्र हैं। नंद बाबा यशोदा जी बड़ी धार्मिक हैं, वो तो दूसरों का दुख देते ही द्रवित हो जाती हैं, तो आपको पुत्र का, उनके पुत्र का, पुत्र होने का भी अधिकार आपको नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं
पिता का गुण नहीं है।
आप में पिता का गुण माता का गुण जो होना चाहिए नहीं है, इसलिए तो आप अधार्मिक ही जैसे ये बातें कर रहे हैं। नंदस्य पुत्र न अर्हति अन्यंतु प्रतिपुरुषम माया मनुष्य मनुष्यम अर्णक वृत्ति को परम अर्हतु नाम भाव निशंसो, जिसमें मनुष्य जैसा कोई गुण न हो करके अत्यंत कठोर निर्दय निष्ठुर मारने वाला हत्या करने वाला होता है। नंद बाबा के ठीक आपके आप में ये प्रतिकूल आचरण दिखा जा रहा है, यदि हम यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा? एक नहीं कितनी कोटि कोटि गोपियां मर जाएंगी। अभी ये सब का पाप किस पर चढ़ेगा? आप पर चढ़ेगा। ये उनको डर नहीं दिखा सकती
ब्राह्मण पत्नी,
ब्राह्मण पत्नी, और ये इनको ये डर दिखला रही है। घातक क्रू, अमर कोश में भी ऐसा कहा है, घातक कहते हैं क्रूर को। त्वया कोटि संख्यो अपि अस्मान प्रति बाक सराश, बाक के सर से, बाक के बाण से आप लाखों कोटि गोपियों की हत्या भी करने जा रहे हैं, हम आपको मना कर रहे हैं, ऐसा धार्मिक कार्य नहीं आपको करना चाहिए। कोई कैसे क्यों कहेगा? जब प्रति की अधिकता अधिक है तब ये कह सकता है, अन्यथा अतः जैसे बहेलिया
बाण के द्वारा हिरणियों को संहार कर देता है। यथा धुनैव शरीराणि परित्यज्य जमपुरम सर्वा एव वयम जामो न तु तदुपदिष्टम गोष्ठम। हम तो कभी भी घर में नहीं जाएंगे, हम बल्कि जाएंगे कहाँ? हम तो सतकोटि जितनी स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, आपके वध करने के बाद में हम सभी जमपुर में जाएंगे। उस घर में जहाँ आग लगी हुई है उस घर में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ही हमको मार डालेंगे, हम चले जाएंगे जमपुर में। न तो तदोपस्थ, आपने कहा जो गोष्ठ में लौट जाओ, हम गोष्ठ में लौटने वाली नहीं है, कभी कदापि नहीं लौट सकती। त्वंतु सठ गोप और तुम सतकोटि गोपियों के वध का पापी होगा यदि हम गृहित्वा स्वयं एवं गोष्ठम जाती और तुम ही गोष्ठ में जाओ। इतने लाखों कोटि गोपियों को मारने का पाप लेकर के तुम गोष्ठ में लौट जाओ, हम नहीं जाएंगे। स्त्री बधन्नो चेत जिघृष तरही सर्व विषयां तत्वातौपाद मूलम भक्त्या सेवी वती स्मान भजस्व। स्त्री बधन न चेत जिघृष, यदि तुम स्त्री बध से यदि पीड़ित नहीं होते तो ये सब करना पड़ेगा, स्त्री का वध करना। और यदि तुम उसे लज्जा करते हो, घृणा है जैसे, नहीं स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, तब तरही सर्व विषयान तक, तो हम सब विषयों को छोड़ करके आए, अब सब विषय को छोड़ दीजिए, जैसे हम ये जथा माम पर, हमने जैसे सब कुछ छोड़ दिया, अभी सब कुछ छोड़ करके भक्त्या भजस्व, जैसे हम भक्त के रूप में हैं तो आपको भगवान के रूप में वैसे ही भजना चाहिए। तो पाद बूलम भक्त्या भक्ता सेवितस वतीयमान भजस, हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप भी हमारा भजन कीजिए। भजन का मतलब क्या, जिस भावना से हम आपके पास हैं उसी भावना से हमारी मनोकामना का पूर्ण करना ही आपके लिए उचित है। अत्र अन्य विषयानि अन्य विषय नित्यानु तत्वा सर्व विषयान तु उक्त्या भगवत असंग संगो ही विषयो न भवती ध्वनित ननु भोग कामिन्य किम स्वसप पतिभ्यो भवती नाम कामो नोपसमय ततस्तान परित्यज्य माम एव भजस्व। तुम क्या पति इत्यादि को सब छोड़कर को आई है इसलिए कह रही है, इसलिए कह रही है इसलिए हमारा भजन कीजिए। तत्राहु तब गोपियां दुरवग्रह दुराग्रही हठता छोड़ो, अवग्रहो वृष्टि प्रतिबंधे इति पाणिनि व्याकरण का। जिस प्रकार से चातकी का स्वाति जल नक्षत्र के साथ में संबंध होता है, वो ऊपर में मुख करके रहेगी, यदि ऊपर से वज्र गिर जाएगा भी तो कोई परवाह नहीं, मर जाएगी, और नहीं तो पानी पिएगी तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगी। इसका अर्थ किसी भी स्थिति में दूसरे मेघ का भी पानी, तालाब का, सरोवर का, गंगा का, जमुना का, मानसरोवर का, किसी जगह का पानी नहीं पिएंगी तो बस स्वाति। वैसे स्वाति नक्षत्र जैसे आप, हम चात के रूप में हम आपके अतिरिक्त छोड़ करके और किसी का भी जलपान नहीं करेंगे, अर्थात प्रीति नहीं करेंगे। कृष्ण मेघो बंधुत्व, बस आप ही के साथ में हमारा बंधुत्व है। यदि दैव वशतः आप विष की वर्षा कर रहे हैं हमें मारने के लिए इन बातों के द्वारा, वाणियों के द्वारा, अवग्रहत्वात् सलिलं न चेत वर्षसि तरही मांग वर्ष। यदि स्वाति नक्षत्र वर्षा नहीं करता है चातकियों के लिए तो न बरसे, आप भी कृपा करके अपनी वाणी हमारे प्रति मधुर बरसाएं अथवा न बरसाएं। तदृष्ट विषम में एवं पीत्वा, हम विष में पी करके ही वयम मृयाम, हम तो मर जाएंगे। न तो निकट स्थानान, निकट के स्थान में ह्रादनी इत्यादि का पानी नहीं पिएंगी, अर्थात पति इत्यादि के पास में हम नहीं जाएंगे, अतोष्मान मात्यज, इसलिए आप हमको मत छोड़िए। यथात्मान कृतज्ञत्वं दधासी इति भाव, आप अकृतज्ञ मत होइए। ननु च सत्यम, चातक मेघ के बिना दूसरे जगह का पानी नहीं पीता, यह बात ठीक है। भले ही वो चातकी मर जाए, जीवंतु या मृियताम, वो मेघस्य न कोपि हानि। मेघ की क्या हानि है, क्या हानि है? यदि चातक लाख चातक मर जाए या जीवित रहे तो उसे मेघ का क्या बनता बिगड़ता है, वो तो अपनी रीति से चलेगा। वैसे हम भी अपनी रीति से चलेंगे, यदि ऐसा आप कहते हैं तो। चेत सत्यम नत्वम बात ठीक है आप कहते हैं, किंतु जड़ तो मेघ तो जड़ होता, आप जड़ है, आपको तो बुझने की शक्ति है, सामर्थ्य है, मेघ हो। किंतु विदग्ध चूड़ामणि नारायण समो नारायण मेव वर्तते, आप तो अरे नारायण के समय है ना, इसलिए हम तो नहीं जानती, हमने सुना है कहाँ, कात्यायनी इत्यादि के मुख से, पूर्णिमा के मुख से, इसलिए कहते हैं कि देव देव उनको कहा इसलिए, और भी इसीलिए कहा ना, ये भाव। इसलिए वो उनका विभु है, अपने स्वभाव की रीति से कहा, या दूसरे से सुन करके इन पर चतुराई से कुछ वाक्य भंगी से ये ऐसा कह रही है। देवती मुमुक्षुआन तद उपासनार्थम सर्विशान तत्वा, जैसे मुमुक्षु लोग सब कुछ छोड़ करके, स्त्री पुरुष धन जन पुत्र परिवार सब देह दैहिक आसक्ति को छोड़ करके मुक्ति के लिए भजन करते हैं, सर्विशान तत्वा तद अभिष्टो विष्टोप पादनया भक्तवश्या, उनकी इस कामना को पूर्ण करने के लिए भक्ति के वस्त्र स्वयं वो प्रभु हरि तदर्थम, उनको उस अर्थ की अर्थ को प्रदान करता, अर्थ तो मुक्ति भी उनको दे देता है, ये उनका भजन है। अपि त्वं कथं, और तुम क्यों नहीं हमारा भजन करेगा, क्यों नहीं करते, ये उससे पूछे। इसलिए यहाँ पर विभो और देव शब्द का प्रयोग किया है, वो कुछ रुष्ट होकर के उलाहना के रूप में उनको कह रहे हैं। तो फल बेचने के लिए जाती, ब्रज से आती, उन गोप गोपियों की बातें, कृष्ण की बातें, जा करके इन लोगों से भी फल बेचने के लिए जाते इनके पास में, तो वो सब बातें उनकी चर्चा होती, वो सब ऐसी होती हैं कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात चारों तरफ में वो बतला। स्त्रियाँ कभी भी चुप नहीं बैठेंगी, कभी नहीं चुप बैठ, जब दो जगह रहेंगे एक जगह हम मिलेंगी तो जरूर बातचीत होगी, और उस बात में उस घर में क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ, पति क्या कर रहा है, उनका पुत्र क्या कर रहा है, ये सब बातें जरूर होंगी ही। इसलिए उनको पता लग गया ये कृष्ण ऐसे हैं, गोपियाँ ऐसी हैं, उनके प्रति ऐसा भाव है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा लोग पूर्व राग के रूप में हुआ, किंतु अभी बहुत कुछ अभी इनमें कमी है, इसलिए कृष्ण ने उस समय उनको नहीं दिया। जन्मांतर में यदि इनका भाव यदि जिनका इनमें से पुष्ट होगा, वो योग माया के द्वारा वहाँ पर जन्म लेकर के, फिर वहाँ पर गोपी गर्भ से जन्म लेकर के भाव की सिद्धि होने पर। गर्गाचार्य जैसे हैं,
शांडिल्य
ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, पूर्णिमा जी हैं, नंदी मुखी हैं, ये सब लोग उनके घरों में आते जाते हैं और सब समय उनका संपर्क होता है। इसलिए जिस घर में धार्मिक लोग होते हैं उनके बच्चे भी धार्मिक होते हैं, और सुनते 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 ये सब बातें भी याद आ जाती हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। वेद की जैसे हम लोग जब मठ में आए तभी से सुना, ओम विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या देवी चक्षुरातम, ये अपने आप सर्वधर्मान प्रत्यज्यमामि, ये अब याद करने की जरूरत नहीं रही, सब समय होती रहेगी।
जो गोपत्नी ने जन्म लेता पुत्री देव का
ঋষিরা যাবে, ওরা বেদ পাঠ করছে, ওইসবগুলি এরা ঘরে বসে কিছু না কিছু তো শুনবে, কিছু না কিছু যাবে। तुम हमारे देवता हैं ब्रज के, गोविंद जी, कृष्ण, मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीनाथ, एक ही व्यक्ति का तीन नाम है। बनवारी जी एक नाम और एक विशाखा के पिताजी और एक कुसुम के पति, तीन हो गए ना, एक ही व्यक्ति। ऐसे कृष्ण एक ही हैं। जब वो अपने रूप से, गुणों से, अपने भावों से लोगों के चित्त को आकर्षण करते हैं, कृष्ण धातु, कृष्ण माने आकर्षण, न माने होता है आनंद, आकर्षण करके आनंद देते हैं, संबंध स्थापन कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं कृष्ण अथवा मदन मोहन, मोहन करते हैं। किसी प्रकार से किसी के चित्त के आकृष्ट करने से संबंध होता है, ऐसे संबंध नहीं होगा तो कृष्ण अपने गुणों से ऐसा आकर्षण कर लेते हैं, ये जीवों के चित्त को चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं, ये मदन मोहन। अभी चित्त चुराया है, किंतु जब चित्त चुराने के बाद में उनकी सेवा आरंभ हो जाएगी तब उनको कहते हैं मदन गोविंद। जैसे वृंदावन में कृष्ण के बांसुरी बजाने पर कोटि कोटि गोपियाँ अलक्षित रूप में एक दूसरे से और वहाँ पर उपस्थित हुई, रास हुआ। रास माने क्या? सबसे श्रेष्ठ कृष्ण की लीला ये रासलीला का, जिसमें सभी प्रेम की जितनी भी लीलाएं हैं सब उसमें अंतर्भुक्त हैं, उसी के अंदर में है, इसे बढ़कर के और कोई लीला नहीं है। जिसमें सबसे अधिक गोपियों का उत्कर्ष दिखलाया गया, जो गोपियों से श्रेष्ठ और कृष्ण का कोई प्यारी नहीं या प्यारा नहीं, इस चीज़ को दिखलाया। अब जब उनकी सेवा आरंभ हुई तो उन्हीं का नाम हो गया गोविंद। और सेवा करने से कृष्ण का भी प्रेम इनको मिला, इनका भी प्रेम उन पर बढ़ा। जब प्रेम की अंतिम परिसमाप्ति एकदम अंतिम तो ये गोपीनाथ, गोपियों के प्राण, उनका नाम तब होता है गोपीनाथ। गदाधर जी राधा है, ये गदाधर जी कौन है? स्वयं राधिका जी हैं। तो महाप्रभु जो राधिका भाव लेकर के आए तो फिर ये
राधा रानी को भाव गौरंग महाप्रभु ले आया, तो राधा रानी को तब दक्षिण भाव पड़ा रहा ना, तो गदाधर उसी दक्षिण भाव को लेके
गत पुरुषोत्तम पाठ बोले।
आया समझ में नहीं ना? क्या
क्या कि महाप्रभु राधा का भाव लेकर आए थे, फिर गदाधर पंडित क्यों आए राधा के रूप में?
हाँ, ये तो कहा ना, अभी बतलाया। राधा जी प्रेम की अंतिम सीमा तक है, कभी कभी मान करती हैं और कृष्ण उनको मनाते हैं, तो इसको कहते हैं बाम्य भाव, और दक्षिण भाव कहते हैं कृष्ण के सदा अनुकूल रह करके जैसा कहते हैं वैसे चल, जो कुछ कृष्ण कहें उसको मान करके वैसा ही चल, उसमें मान टान नहीं हो। यदि कृष्ण ने कभी कभी कृष्ण को कुछ बिगड़ भी गए तो ये रो देंगे बस, और अधिक कुछ नहीं करते। जबकि राधिका जी में मान और दक्षिण दोनों भाव है, परम सीमा तक। तो उनका भाव ले लिया ना, राधिका जी का अपना भाव है बाम में भाव, तो बाम में भाव महाप्रभु जी ने ले लिया और गौरांग रूप में आए, तो राधा जी में केवल बच रहा दक्षिण भाव। इसलिए गदाधर जी न तो बिगड़ते हैं, न मान करते हैं, न कुछ करते हैं, किंतु हैं राधा जी, है उनमें मानस, प्रेम की अंतिम सीमा तक है, किंतु प्रकाश नहीं कर रहे हैं। ये गदाधर पंडित जी क्यों नहीं प्रकाश करते, इसलिए नहीं प्रकाश करते हैं भाव को, कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं, इन्होंने हमारा भाव हमसे उधार लेकर के ऋण लेकर के मंगनी मांगा है और ले आए, अब देखते कि हमारे भाव का व्यवहार ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ये वाच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, जैसे कहीं गड़बड़ ना करे, यदि गड़बड़ करेंगे ना, जैसे कि बरहा पीड़म श्लोक उच्चारण किया महाप्रभु घर में, तो उनमें कुछ गड़बड़ी हुई, भाव ऐसा नहीं आया, तो भीतर से रोते हुए बरहा पीड़म ऐसे मधुर भाव से उच्चारण किया है जी, महाप्रभु ने कहा जी घर में कौन है, कौन रो रहा है और कौन उच्चारण कर रहा है, अर्थात तो उनमें कमी हो गई उस भाव, क्योंकि कभी भाव प्रकाश वो नहीं करना चाहते थे, राय रमानंद से मिलने के बाद में वो भाव प्रकाश करना था, इसलिए प्रारंभ में कैसे करें, तो उनकी त्रुटि इनसे देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने इस भाव को प्रकाश किया। जैसे नाम सुना है बैजू बावरा,
तानसेन बिजू बावरा,
तानसेन और बैजू बावरा, ये दोनों शिष्य हैं, इनके गुरु हैं कौन,
हरिदास, हरिदास
वृंदावन वाले हरिदास, इतना सुंदर गाते थे सब लोग, जब इन्हीं दोनों को इतना बड़ा ऊंचा समझते हैं तो और कुछ बात, बैजू बावरा तानसेन से बहुत अधिक श्रेष्ठ था। एक समय की बात है, बैजू बावरा इनके पास में आए और कीर्तन करना लगा दिल्ली की गलियों में, उसमें कीर्तन करना मना था, गान करना मना था, कोई करेगा तो उसका प्राण ले लिया जाए, तो या करके करने लगे, तो लोगों ने निषेध किया, निषेध किस लिए, तो यदि आपको तानसेन हरा देगा तो आपका प्राण ले लेगा, पर अच्छा उसे आने दो, तो बादशाह ने इनको दरबार में बुलाया जहाँ पर तानसेन भी था, उन्होंने कहा जब तब आप दोनों की बराबरी हो, देखें ये कौन सुंदर संगीत करता है, जो हार जाएगा, यदि आप हार गए तो आपका प्राण लेना पड़ेगा, और नहीं तो ये हार जाएंगे तो इनका प्राण हम ले लेंगे, पर ये यहाँ नहीं, आप निर्णय नहीं करेंगे, कोई सभासद नहीं, ये वन के जंगल के पशु पक्षी निर्णय करेंगे, वहाँ पर होगा, वह सब लोगों को लेकर के और वन में गए और वहाँ पर तानसेन से कहा जैसे आओ, उसने गाया, और इसके बाद में इन्होंने वीणा लेकर के जब गाना आरंभ किया तो हिरणियाँ सब छुप करके वहाँ पर चली आई और पशु पक्षी आ गए, उन्होंने अपने गले की माला लेकर के और उसके गले में डाल दिया हिरणी के, इसके बाद गान समाप्त कर दिया तो वो चली गई, उन्होंने कहा जी उन हिरणियों को बुला करके और उनका माला हमारा लौटा करके दे दो तो तुम हमसे श्रेष्ठ हो, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, उन्होंने कहा जी तो अपने स्वभाव से आ गई थी ऐसी नहीं आई, फिर उन्होंने बिना लिया और फिर वो बजाया, ऐसे ये बैजू बावरा है ना। एक दिन अकबर बादशाह इनके पास में गया तानसेन को लेकर के कुछ सुनने के लिए, उन्होंने कहा जी हम अपना संगीत भगवान को सुनाते हैं और कोई क्यों नहीं, इन दोनों के लिए, उन्होंने कहा जैसे बादशाह आया है और इनको गान नहीं सुनाया गया, तो दूसरे दिन वो अकेले आकर के एक राग रागनी वीणा पर लेकर के बजाने लगे, किंतु उसमें वो भाव नहीं आया जो आना चाहिए, बस उसके हाथ से कहा जी इतना दिन तुमको पढ़ाया और ये किया, तुमको ये ज्ञान नहीं, ठीक से बजा नहीं सकते और गा नहीं सकते, बस बिना लेकर के, और सब ऐसा सुंदर गान किया जो वर्षा हो, जिसको मल्लार राग कहते हैं, तो ऐसे ही जैसे कि उन्होंने एक गलती कर करके जानबूझ करके हो या जैसे गलती हुई, तो उन्होंने अपने विद्या का पूरा प्रयोग कर लिया, ऐसे ही किसकी उपमा दे रहा था किस चीज की बतला रहा
है?
घोड़ा है कि वही गदाधर पंडित जी वहां पर हैं। उन्होंने एक दिन कहा, देखो मैं तुमको एक चीज दूंगा, लेगा?
महाप्रभु ने कहा।
महाप्रभु तो उन्होंने कहा जैसे आप चीज कोई देंगे और मैं नहीं लूंगा, अच्छा ठीक है। उन्होंने बालू हटाना आरंभ किया वही टोटा गोपीनाथ में, और हटा जहाँ पर आजकल नाट्य मंदिर बन गया है उसी के अंदर में कहीं, और उसको बड़े प्रेम के साथ में हटाना आरंभ। हटाते हटाते सिर दिखाई पड़ा, और भी हटाना हटाता हटाते देखा श्री गोपीनाथ जी का भी, और लेकर के उनको इसकी पूजा करना। किस लिए दिया? महाप्रभु को बहुत सी लीला करनी है, उनको वृंदावन जाना है, और गदाधर संग छोड़ेगा नहीं, और गदाधर रहेगा तो हमारी हमको संकोच रहेगा, क्यों? ये परीक्षा यदि मास्टर साथ में है ना तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए गदाधर जी को वहां पर छोड़ने के लिए उनको दे दिया। ये है गोपीनाथ। इसके बाद में एक दिन वहीं पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी बंगाल से आए, और सुंदर सुंदर कपड़े गोपीनाथ जी के लिए, और कुछ अलंकार, कुछ चावल, कुछ और चीजें वहां से लेते आए।